हैं अपने शौक के लिए और गौक के लिए या लज्जत के लिए, उसी अमल को अगर बदलते हैं जाविए निगाह को बदलने की जरूरत होती है। इसलिए इन चीज़ों का बार बार सच्चा होता है कि जो हमारे मामूलात में है, लेकिन उन पर नियत नहीं करते, इसकी पाबंदी नहीं बनता और खालिद नहीं बन जाता है। इस्लाम को मुबारक जिंदगी लेके आए जो हर शख्स के लिए आसान है। आपकी जिंदगी में कुछ तंगी नहीं मिली, सख्ती नहीं मिली, आप पर इस्लाम की जिंदगी में बड़ी मुसत है, बड़ी मुसत है। बस देखना पड़ता है आदमी किस निगाह से उसको देख रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत और पसंदीदा चीज़ों में यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरे भरे मैदान और बागीचे और नहर ये बड़े पसंद थे। तकरीबन सबसे पसंद तो बाग मैदान है, नहरें हैं, बहता हुआ पानी है, यह आपसे सिर्फ वक्त महदूद थे। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लम का हरे और शादाब इलाके बहुत पसंद थे और आप बागीचे में नमाज पढ़ना पसंद करते। कभी कभी आप सल्लम अपने हजर मुबारक से निकलते और अली जो बाग का बेरहा है और दूसरे बाग है बहुत अच्छी से जाते और किसी तरफ की नीचे आप सल्लम नमाज से मशगूल कर रहे। तो बागीचे तो आपको पसंद थे लेकिन उसको खैर के साथ रखा था, चल के साथ। इसी तरीके से आपको जहाँ पानी बहता हुआ हो वो इलाका भी बड़ा पसंद था, बहते हुए पानी को देखकर आप पसंद करवाते थे। अलग अलग करवाते थे, आपको हरियाली और बहता पानी बहुत महबूब पसंद था। और एक जगह फरमाया हजरत अनस ने कि आपने शायद फरमाया कि दिलों को थोड़ा थोड़े देर बाद राहत भी पहुँचाते रहा करते। आदमी एक जगह रहते रहते तो खुल जाता है। तो कभी बतौरे सुन्नत के तफरी के मकाम पे जाते हैं, बेशक से कि वो जगहें बेहूदा ना। फिर वहाँ अल्लाह की याद से भी कैसे पिछौरी बनी है। हमारा साल का सफर था 20 साल पहले, 25 साल हो गए, पूरा सफर हमारा यूरोप का दस पर होगा। सफर का सिर्फ टाइम टाइम है, अक्सर टाइम से गुजरना होता था। नहीं पड़ता एक पॉइंट में हमने टाइम से सही नहीं टाइमर लगाया और वालों को बात करते थे। तो फजर के बाद मेरा मसाला डाल के बैठ गया, नमाज भी पढ़ी सबने अपने बैठे का मतलब बहुत जोर से करता था। तो बिल्कुल ऐसा लगे कि बैठे भी लड़ना कर रहे कई दफाए तनहाई हो, हरियाली हो, आदि जगहों को निकलते आपस देख रहे हैं। ऐसी सफर के दौरान में कहीं बाघ आ जाता तो पैदल समझता है पूरे यूरोप का बाघ बहुत होते, तो जब आप सर्दी ज्यादा बोल करती वगैरह होता है और फिर लगते पड़ते उन नफरों की वो कैफियत होती थी कि कोई रुकू में चला गया तो रुकू से वो जीना चाहे, सजदे में चले जाए तो सजदे से वो जीना चाहे, व्यायाम करे तो रुकू में जाने जीना चाहे। तो जरा अभी था वो कहना पड़ता था, नहीं चलो चलो उसके लगे दूसरे आगे चलो वहाँ करो। بعد کی جگہوں پہ جاتے ہی ہیں. اگر اتباع سنت کی نیت کر لے تو جانا نہیں بنے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی باغیچوں میں تشریف لے جاتے اور وہاں نماز پڑھتے. کبھی کبھی آپ سے وہاں باغیچے میں آرام نہیں فرمایا کہ بھائی تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد دلوں کو راحت پہنچاتے رہا تو انسان کی فطرت ہے. میرے پہلے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ زندگی لے کے آئے جو سب کے لیے ہے. تفریح اگر مباح ہو تو جائے تو آپ بھی ملیں گے اچھا سننا تو سب دنیا تو بول رہے ہیں. ہمارے اخبار سے ہی خاصہ رحم اللہ کبھی کبھی ہم اسی وجہ رات کو 12 بجے جو ہے کیا اسے وہ سمجھنا چاہیے اور ہمارا پھر 4-5 ساتھی وہ ساتھ لے کے جاتے اور جو کہ چوریے بیٹھی ہوتی ہے جا کے دعوت 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 سے مولانا بات ہو جائے تو مولانا بہن کے اوپر زیادہ دراز بتا تو آدمی پڑھ کے اس کو دین بنا سکتا ہے. چل سکے اور بے پردگی بے حیائی یہ چیزیں ہونا تو آدمی کی اپنی مایا بھی ڈوبی آئے گی. جگہ نہ جانا بہتر ہے جہاں آدمی کے ایمان کے روپ سے کر سکتا.
نام کو بدلا جا سکتا ہے.
حضرت ابن عمر فرماتے ہیں ان کی ایک صاحبزادی کا نام آسیہ تھا، تو آپ نے ان کا نام جمیلہ رکھ دیا، جمیلہ رکھ دیا. اور ایک اور صحابی وہ کہتے ہیں کہ ان کا نام زحم تھا، تو آپ نے ان کا نام بشیر رکھ دیا. اگر نام کے معنی صحیح نہ ہو یا کسی بگڑے ہوئے سے نسبت بڑھتی ہو تو اس نام کو بدل دینا چاہیے، صرف نام بدل دینا. اس لیے صحابہ کے سارے نام رکھ سکتے ہیں، کیونکہ صحابہ کے ناموں کو اگر بدلنا ہوتا تو آپ نے اپنی زندگی میں بدل دیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ کیا نام رکھا ہے. میں نے کہا کرم. آپ نے فرمایا نہیں وہ حسن ہے، وہ حسن ہے. تو جب حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو میں نے ان کا نام حضب رکھا، تو آپ نے فرمایا وہ حسین ہے. پھر محسن کی ولادت ہوئی تو میں نے حرم رکھا، تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ وہ محسن ہے. جو امت کو سکھایا جا رہا ہے کہ صحیح نام رکھو، صحیح نام رکھو. عرب کے معنی لڑائی کے ہیں، عربوں کا یہ نام قتال وغیرہ میں ممتاز اور ماہر ہونے کی وجہ سے پسندیدہ تھا، تو آپ نے اچھا نام رکھ دیا، اچھا نام رکھ دیا. آپ نے فرمایا حضرات انبیاء اکرام کے ناموں پر نام رکھو، خدا کی نزدیک پسندیدہ نام عبداللہ عبدالرحمن ہے. اس لیے میں فرماتا یہ ہے کہ نام اچھے رکھنے چاہیے. اور ایسے جو متکبر بادشاہ اور ظالم بادشاہ ہوتے ہیں ان کے ناموں کو رکھنے کو بھی منع کیا، تو ان کے نام مت رکھو، نہ بچوں میں بھی ان کی چیزیں مستقبل ہوں گی. جیسے مسیب کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھائی کے ایک لڑکا پیدا ہوا، لوگوں نے اس کا نام ولید رکھا. اسے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے فرمایا تم نے رام کا نام رکھ دیا؟ آپ نے کہا چھوڑو چھوڑو، اس کا نام عبدالرحمن ہے، تم اس کا نام ظالم فرعون کے نام سے رکھ دو. ہماری امت میں ایک ولید نام ہوگا وہ ہماری امت پر فرعون سے بھی زیادہ سخت ہوگا، جو اپنے قوم پر ظلم کرتا تھا. ایسے دنیا دار اور ظالم بادشاہ ان کا نام رکھنے سے بھی بچنا چاہیے. ریاض صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ اگر کوئی نام برا ہوتا تو بدل دیتے. اس لیے کہتے ہیں کہ نام رکھنے سے پہلے علماء سے پوچھ لینا چاہیے، علماء سے پوچھ لینا چاہیے کہ کیا نام رکھا جائے. تو آج پورا خیال نہیں آتا، کہتے ہیں کہ نانی کو پکڑنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دادی کو پکڑنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حالت امریکہ سے نام لکھ کے بھیجا ہے. وہ سب تو صحیح ہے لیکن کچھ معنی بھی تو باقی درخواست کرنی تھی کہ اس پر چاروں طرف جو پریشانیاں ان کی پڑی ہیں، کہیں لوٹ ہے، کہیں سود ہے، کہیں بھتا ہے، اور کہیں سطح جگہ مبارک ہے، اطمینان کر لینا یہ کچھ نہیں ہے. اور قوت سے ہم روک نہیں سکتے، تو ہمارے پاس ذریعہ کیا ہے؟ دعائے دعا کی کیا ضرورت ہے؟ اور حفاظت کے اعمال، ظاہری حفاظت کو تو ہم نے دیکھ لیا، جتنے بھی گئے ہیں وہ گارڈوں کی موجود بھی نہیں ہے. کسی گاڑی میں چار گارڈ بیٹھے ہوئے، کسی میں دو بیٹھے ہوئے، تو ظاہری حفاظت بنانی ہے. لیکن جتنے اب تک گئے معلوم شخصیتیں وہ گارڈوں کی موجود بھی نہیں ہے. वहां से वाली यानी मतलब ये वहां से ना रखे हैं, लेकिन हम सब आमाल का एहतमाम अल्लाह पाक के हिफाजत आमाल में आमाल और आमाल के पत्ते में भी अगर आ जाए तो शहादत और क्या है। लेकिन अभी उम्मीद है कि आमाल करेंगे इंशाअल्लाह आदमी महसूस करेंगे। अब कितना अहम हो गया है कि अपने गली के अपने गली से अपने दरवाजे से छीन के रोक लेते आमाल का इस्तेमाल करें। और हमारे इब्राहिम का साहब लोग आपको फरमाते हैं कि जिसके खत्म करने की करना जिसको खत्म करना हो उसके लिए हिदायत की दुआ मांग रही है आज भी फरमाया है तो जिसको खत्म करना हो उसकी हिदायत की दुआ और उनका शिवाय सब जहीं को संजीवों का नाम लेने की हिदायत की दुआ एक एक का नाम लेकर कि अल्लाह पाक ने अगर इनके मुकद्दर में हिदायत दी है तो हिदायत मिल जाएगी वरना अल्लाह पाक खुद ही इसको निमेट। अब हम देखें कि आप हिदायत दुआ करते हैं नहीं नाम लेता किसी का जो भी अखबारी मिट्टी का जरिया बन रहे हैं चाहे वो किसी पार्टी के हो किसी ग्रुप के हो किसी तंजीम के हो किसी शायरी के हो बात कहीं सब ये पैगाम नहीं सारे कराची वाले जिनकी तरफ से मुश्किलात आ रही है उनका नाम ले लेके हिदायत की दुआ करके देखें हम सब अल्लाह पाक कैसा फजल करना पक्की सच्ची बात और यह मारिया सब फरमाया जिसको खत्म करना चाहते हो उसके लिए हिदायत की दुआ करते वो अक्सर महंगा है फिर हमारा काम बन गया नहीं है तो अल्लाह पाक मुझे उससे निपट गए हम तो निपट नहीं सकते थे जिंदगी में। अभी जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए हिदायत की दुआ हो निकलेगी बड़ी मुश्किल से दुआ दिल से बड़ी मुश्किल से निकलेगी लेकिन काम हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा आमाल का एहतमाम भी है और आमाल तो उस वक्त होते हैं जब बुनियादी जिक्र अज़कार की पाबंदी हो मतलब आदि आमाल ना करें जिक्र का ये उसमें से फ़ज़ाइल में से फ़ज़ीलत ये भी है कि आदमी को अल्लाह पाक मौके पे अमल याद दिला जब भूल जाते ना वो घर से निकल तो पाए कि कुछ पढ़ना भूल जाए घर से निकल तो दुआ भूल जाए सुबह के दुआएं भूल जाए अगर जिक्र करेंगे तो अल्लाह पाक हर मौके की अमल को जाने अगर जिक्र करना का ध्यान रखें तो ध्यान रखी होगा तो जिस मौके पर जो अमल करना चाहिए वो आदमी कर सकता है। तो जिक्र की अहमियत और जिक्र की अहमियत अल्लाह के जिक्र की अहमियत जब अहमियत होगी तो आज इसके लिए वक्त निकालेगा आज तो ये जवाब मिलता है कि ये वक्त नहीं मिलता तो वतन के गैर अहम जिन चीज़ों में लगे हुए हैं उसके लिए वक्त मिल रहा है तो इसको अहम समझते हैं। 8 घंटे की मुलाजमत को तो काम समझते हैं ये वक्त जाते हैं वक्त पर वापस आते हैं जिक्र को काम नहीं समझते इसलिए नागा हो जाते 10 घंटे दुकान पे बैठने को काम समझते तो वक्त पे जाके खोलेंगे और कोशिश करेंगे तो वक्त से बात कर सकते हैं आज तो देर होगी कि दुकान घंटे पहले पहले कहा काम है नहीं उसका आधा घंटा उसको काम समझाए ना तो उसके लिए वक्त है। अगर ऐसे जिक्र को काम समझेंगे तो फिर जिक्र के लिए वक्त है और हर एक के पास ऐसा नहीं है रही जिक्र बस अहमियत नहीं आ रही। अली ब्राह साहब दाम का तो ने शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह से एकदम अपने ज्ञानत फजर फजर का बयान करता हूँ मुकदमा तो आई सब 3-3 घंटे का बयान करते हैं और खड़े होकर बयान करते हैं सुन्नत जो है खड़े होकर बयान करना है अगर माधुरी ना हो गुजर ना हो अब नौजवान लड़के भी कुर्सी पर बैठ के ध्यान करने लगे। बड़ी बोल का है, माजूर है, फिर तो ठीक है, मगर दावत जो है वो तो खड़े होंगे। अब आज साहब को मस्ती में कितने देर तक शुरू खड़े होकर ध्यान करते, 3-3 घंटे का ध्यान खड़े होंगे। दावत जो है वो तो खड़े हो गए, आपसे कहने गए तो आप खड़े हो जाएंगे, लोगों का अल्लाह की तरफ जवानी भी कीमत पर बैठ रहे कुछ भी बैठ रहे कूड़ा हो किसी सफर के तक सामने तो बात जो है वो अलग है, मतलब तो उसके बाद जमातों की रवानगी और वापसी और फिर दोपहर के बाद तालीम असर के बाद मिलने वालों से बात करना सारे मामला है, इसलिए जिक्र किए वक्त मिलता है शहर सफाई से नाश्ता करना चाहूँगा वो जो 20 मिनट बचेंगे उसमें से कर सकते, नाश्ता करना इतना जरूरी नहीं है जितना निकल इब्तदाई वक्त की बात। अब तो आज इतना परेशान लगा तो नहीं सकते तो नहीं सुबह काम नहीं जो सारा दिन दावत देता हूँ और पता नहीं अल्लाह की पढ़ाई के बोल कितने बोलता हूँ उनको जिक्र की जरूरत महसूस होती मुझे आपको नहीं होती। मैंने गाड़ी जिक्र को काफी सुनने मैंने मुझे उसके बगैर गाड़ी की गाड़ी मजबूरियत की दुनिया की एक जुमला और एक बात कभी घंटे उनके सामने नहीं है वो भी कैसे जिक्र चल रहा है सामने और ऐसे कौन से करते हैं। अब तो असर मस्जिद भी लगे और काम नहीं करते सिवाय रमजान के, रमजान में असर मस्जिद में जान ध्यान करते बाकी असर मस्जिद का दरवाजा बंद करके जिक्र करते कि आदमी चल नहीं सकता जिक्र के बाहर चल नहीं जैसे पेट्रोल के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती ऐसे जिक्र के बगैर आदमी नहीं इतना जरूरी। और जब जिक्र से मुलाकात हो जाएगी तो फिर इसको पूरा किए बगैर किसी चीज में जी नहीं लगता। हमारे बाद ये संपादन साहब रहमतुल्लाह मशहूर है कि फरमा रहे हैं कि भाई और बेचैन से बैठे थे एक मस्जिद में दूसरी में शाही मशीद साहब रहमतुल्लाह जमाने में अमीर होते थे शाही सब इस पर याद रहते गए और फिर वापस आए देर बाद आज की तरावत रह गई थी उसको पूरा किए बगैर मेरा दिल ही नहीं लग रहा था कि क्या ऐसी कैफियत को लगता है अल्लाह को देखा जब तक सुबह जिक्र नहीं कर रहे तो तलावत नहीं कर रहे थे तो नाश्ता नहीं कर रहे कभी नहीं सारा मतलब इंतजार बैठा हो बैठा हो तो कह रहे तुम शुरू करो शुरू करोगे आप शुरू करोगे आप शुरू नहीं हो मेरा तो सिपारा पूरे के होगा जो मामूल था तो आई चार सुबह थोड़ी देर लेट देगा सारा देर घंटा आधा घंटा पौधा घंटा और बस उसके भूल करके अरे लसन पड़े और फिर पर आगे सलावत पूरी करके फिर और जो छोड़ देंगे जब नाश्ते के बाद फिर वो सब गया रात में काम इसलिए अगर हम अपने मामूलात वक्त तय कर देते कि वक्त मुझे कहने पर दावत इस वक्त में दावत इस वक्त में तालीम इस वक्त तो दूर तरह वाले अखलाक के साथ लोगों के साथ भेज जाना ये सारे काम सारे काम होते जब ये चीजें पाबंदी से होनी चाहिए अनाए बनाए खुद पर छठी शुरू होते जो कसरत जिक्र करता है ना उसकी चीज को पूरे हाथ नहीं लगाता। मोहम्मद का बात है ना कि हजरत हाजी साहब कहेंगे ताकत थे और इससे ताकत थे कि सौदा लेने जाते थे खेली में पैसे रखे होते थे, सौदा लेकर उसको खाली दे देते थे इसमें सबसे पैसे ले लो, पहले सीधे में दिन से कौन निकाले थे सिक्के होते थे छोटे बड़े गिन के कौन निकाले सीधे में जिससे मतलब रिटर्न कर लूंगा, सौदा की अच्छा ही उसको दे दी कौन से पैसे लेके थे वापस कर देना एक चक्के को चोर को पता चल गया कि अगर उसके पास थैली होती तो एक दिन आया और थैली चक्के में तो हजरत ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि कौन लेके गया कि उसके काम और उनका चोर बचाने के अलग अलग कर सकते पर एक के भी देखा कि कौन लेके गया अब मुझे लेके दौड़ा तो गली आगे बंद पलट के दूसरी तरफ गया वो गली में तीसरी तरफ वो गली चारों तरफ से रास्ता बंद निकलने का समझ दिया कि ये सॉरी बात आया और शायद पकड़े कि अगर मुझे माफ कर दे अपनी थैली ले तो दे दिया करते फिर ले दे अगर दुआ कर दे तो फिर क्यों उनके जान से रास्ता उनके अगर रास्ता पता कर निकल ہر عمل کے ساتھ اللہ پاک نے کچھ محافظ رکھے اب ہفتوں تنقیات نہ ہو ہفتوں قرآن پاک نہ پڑھا جائے اور ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے کہتے ہیں آیت الکرسی تو پڑھی تھی مستقل آماد کرنے کے لیے مستقل لگ کے جم کے مستقل آماد کرنے کے اس ترکیب بنانے کے آگے سائن کے بارے بار بار کرنا چاہیے بار بار کرنا چاہیے اب ہمارے ساری انسانیت کے لیے دعا ساری انسانیت یہ ساری مخلوق اللہ کی خیال ہے کرے گا اور ہر مشکل میں اس کے لیے میں سب ہو جاتے پیدا اور ایسی جگہ سے جس کو جانتے اب اس سب بات جب سیدھے آگے اب کیا بچے اور سدگوری رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ 300 کا عدد کثرت سے آ جاتا ہے تو اگر ہم 300 ورثہ میں سب پار کر لیں امید ہے کہ ان شاء اللہ کثرت میں آ جائے گا اور یہ اللہ کو بھی اس سے زیادہ نہیں اللہ نکالے گا تو چار دفعہ کرا ہوتی چھوٹی لیکن آدمی کو لگ کے آمال کرنے پڑتے یہ تھوڑی نہیں مہینہ دو مہینہ کر کے اثر انتظار میں بیٹھے ہیں راحت ہے تاج چلنے پڑی تھوڑی کے انتظار میں بیٹھے ہیں کیا مہینہ سے آئے گی تھوڑا دو چار مہینے پڑ کے بھی کہتے ہیں آدمی لگ کے کرنا پڑتا ہے دور آنے کی سلام دے کتنے آپ کی دعائیں مانگی آپ سے زیادہ کون ہوگا دعا ایسا تمہارے مورت سے انسان صاحب رحمۃ اللہ نے 10 سال مسلسل دعا کی کہ اللہ اس مرحل سے بازار کو ختم کر ثواب کے بعد صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں اور چلوں کو منسا کرتے پہلے وہ بازار تھا دس دکانیں دس دکانیں بیچ میں صحیح کرتے ختم ہوا बहुत बात दुकान है ऑफिस में गलत चीज सकती उधर भी दुकान है इधर भी दुकान है ऑफिस में सही करते थे अपने मन पापा अल्लाह ने ऐसा कदम किया कि उससे भी दो पड़ाव दूर मिल जाएंगे जितना पुराना मक्का था तो असल मक्का की आबादी थी वो सब हरम के अंदर आ गया ऐसा कबूल किया जितना पुराना मक्का और मदीना की असल आबादी थी वो सब हरम के दुआ किसी ने मांगी 10 साल हरम चलने पर घबराया
और अगर गुजारा को दुआ लंबी करते तो उसकी खैरियत नहीं है
उसके से पहले ही कार्यक्रम मुक्त होकर दुआ करना, हमारे टुकड़ा क्या होता है मुक्त होकर दुआ करना, जरूरत ही क्या करनी नहीं रॉक है बाहर अल्लाह हो जाए हमसे कहने से गुल्ला इला ठीक है। मैं एतराफ करता हूँ कि मजालिस में मुख्तसर ही रखना चाहिए, लेकिन मजलिस को जाना होता है, लेकिन शौक क्या है हमारा मजालिस में, कोई भी मजलिस होगी जो मुख्तलिफ रहिए लोग होते हैं, कारोबार में जाना है, दफ्तर जाना है, उनकी है बीमारी, घर का काम हो, लेकिन सारी दौर में तो पाबंदी है खिदमत वाले ने कहते दुआ मुख्तसर कर दो, चाय ठंडी हो गई दुआ मुख्तसर हो जाए, इतना ठंडी क्या बात है, एक आदमी अल्लाह से दुआ लगाए बैठा है उसको चाहिए दुआ मांगने वाले को कहते वक्त बिना दुआ में लगे जो इज्तमाही काम का वक्त इतना रहन किया है, कोई बात नहीं गर्म चल के पिला देना तुम्हारे क्या बिगड़ जाए, दुआओं की तरफ सदिए चल नहीं चल उसी का दुआई हमारा सरमाया है और है क्या हमारे पास दुआ ही हमारा सरमाया है, हमारे पास और क्या है, इसलिए हर साथी अपने बारे में सोचते हैं कौन सा वक्त हमारे ऊपर दुआ कम अज कम 15 मिनट से मैं शुरू करते हैं, बाद दफा वो दुआ समझ में नहीं आई कि क्या मांगू, आज ही सब पर दुआ पढ़ा उसमें लिखा था कि अब मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या दुआ मांगू, घर की कोई चीज मांगू तो घर में मौजूद है, खुशियों की मांगू तो अगर किसी की दीदी अब क्या मांगू, बाद आदमी को पता चल रहा क्या मांगू, लेकिन मन से मन से अल्लाह सुझा रहे क्या मांगू, मतलब कुरान हदीस की दुआएं याद कर लें बहुत ऐसी जामे हैं, ऐसी जामे हैं वालों को पता नहीं चल रहा है, बाद में सब सीखा हमारे एक साथी माशाल्लाह बहुत है तमाम दुआएं करने वाले और साहब दौर है वो अपना सिलाई वापस सुनाते करते पहली मतलब उन्हें हंस पे गया तो कम उम्र थे, पहले एक मुझे एक साथी जब समझते कह दिए थे मेरे पास होने की दुआ करते घर में दुआ हुआ कभी मांगनी आती ही नहीं, यार सारे ऐसे वक्त मैंने एक ही दुआ मांगी अगर उसको पास करते उसको पास करते सारे अहज में एक ही दुआ मांगी मालूम ही था दुआ करते 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 मतलब ऐसे दुआ वाला बना दिया, इसलिए आदमी दुआ ना भी समझे एक दुआ का मांगता है सारी इंसानियत पड़ी के लिए सारा दौड़ी के लिए आ गई यकीनों के बिगाड़ फैले हुए हैं उसकी दुरुस्ती की दुआ मांगता है दुआ मांगता दुआ की तो कमी नहीं है, इसलिए एक तो सरकार पैसा दे भी दीजिए दुआ में सबको लगाओ सबको औरतों को भी मत हम अपने घर की औरतों को जाकर भी दुआ में लगाए वो भी दुआ पाई अल्लाह पाक सबकी दुआ को कबूल करें तो वही है कि जिसको सबकी दुआ हो इसलिए दुआ में वक्त लगाएं और अपनी तस्बीहात और तलावत को भी दरकार लें आमाल के बगैर हम खुश नहीं किसी चीज में हमारे ज्ञान नहीं होंगे अगर हमारी तस्बीहात तलावत दोनों चीजें कुरान में कुरान अब्दुल जिक्र तो कुरान ही है तो कुरान हमारे हजरत रहमतुल्लाह फरमाया करते थे उम्मत की शान के खिलाफ नहीं बात तो थोड़ी देर उससे ऐसा गुजर जाए तो उससे कुरान ना पढ़ो उम्मत की शान के खिलाफ ऐसी जो हजरात बैठते हैं और हमारे मामला मजे से सुनना तो फर्क देंगे 41 मतलब उसके बाद हजरत रहमतुल्लाह फरमाते थे बहुत मुजर्रब अमल बहुत ही ज्यादा मुफीद बहुत ही ज्यादा फायदे वाला लेकिन सुन्नत और फर्ज के दरमियान ये तो आदमी की आदत से छुटे तो गुंजाइश से अच्छा बजट रह जाए तो फर्ज की बात पूरी कर लेना, लेकिन अगर सारी जिंदगी फर्ज के बाद ही पूरा करते रहे तो एक डॉक्टर कहता है कि रात से आधे घंटे पहले ही गोली खा शुगर वालों को कहते हैं अब वो अगर कभी भूल जाए प्रोग्रेस में तो भूल जाओ तो नाश्ते के बाद कर सकता है लेकिन अगर बारिश नहीं रास्ते के बाद ही खाता रहे तो वो होता चीज है, तो क्या है जो गोली से आना चाहिए फिर कहीं मुझे फायदा नहीं होगा। तो जैसे कहा है वैसे करो। तो ऐसी ही ये अमल सुन्नत और फर्ज के दरमियान का है, इससे इंशाल्लाह एक तो जमात की पाबंदी होगी, तकबीर उल्लाह की पाबंदी होगी, और चंद साल की पाबंदी कर ले तो अल्लाह पाक खुद आपको दिखा देंगे आपको क्या मिलता है, आप खुद दर्ज करेंगे जितने साथी को ये इजाजत मिली हुई हमसे दरखास्त है कि तुम सुस्ती ना करें। ये हमारे सिलसिले का बहुत अहम अमल है। एक सारी मरतबा बिस्मिल्लाह मिला के पूरा पास बिस्मिल्लाह सुन्नत पढ़ के जाते सुन्नत से पढ़ते भी चले जाए और सुन्नत को पढ़नी चाहिए करके इसकी भी आदत आए कि घरों को कब्रस्तान ना बनाए, घरों को घरों को कब्रस्तान ना बनाओ, घरों में अल्लाह की याद तो नवाफिल और सुन्नत से घर में पढ़ने की आदत डाले। पहले बाद वाले में सुस्ती का खतरा होता है कि पहले रह ना जाए तो शुरू की सुन्नत तो घर से पढ़ के जाएंगे, घर में जिला बनेगी, माहौल बनेगा, रहमतें आएंगी। इस तरह अगर जो खड़े की सुंदर घर में पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं मस्जिद में क्या अब घर से निकलने की दुआ भी पढ़ रही, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ भी पढ़ रही, बस ख्याल रखिए घर कोई साफ नहीं सूर्य पाठ रहा और ये जिक्र और सलाह इन आमाल और एक ये है कि अपने बड़े जो दुनिया से रुखसत हो गए ऐसे हमारे सब कुर्बानी करते हैं कितने बीटियों के आसपास ऊपर से चलते हैं और सारे आकाब है जो बड़ों को सारे सवाल करता रहता है हम लखबात उनकी नस्बत तो हमारे कहते समझ कम समझ अगर तीन मरतबा अव्वल आखिर जरूरी है एक दफे सुन्नत पाठ करा और कम से कम तीन मरतबा को अव्वल ना पढ़ लें ये कुरान में सवाल है इतना तो आसानी से कर सकते रब के सिलसिले को मिटाए तो अल्लाह सब तौफीक दे हरी और उमरे की कभी किसी जरूरत की तरफ से कहीं किसी तरफ सबसे पहले जरूर कदम करना चाहिए तो और भी तरफ सारे सवाब से बहुत फायदा होगा अपने सिलसिले की जितने बच्चाए गुजरे हैं जिसकी आकादी अगर सुनिए तो जिनके नाम याद है नाम होना तो हम तक अगर माहौल बनाने की जिक्र करने से पहले थोड़ा सा तीन दफा उम्र तीन दफा आगे जरूरी थे और एक दफा जरूर पास रहा और कम से कम तीन दफा फल बन रहा इससे ज्यादा पढ़ सकते हैं तो पढ़ क्या बैठे तो आप गुरुपुरा के साथ इस्लाम को तमाम अंबिया के तमाम सहाबा समाजवादी साधन और सारे अकादर बचाए उसी तक हमारे सिलसिले की जितनी जरूरत है तो उसी से हमारे हजरत राहिम लाने के बाद मौल रियाज साहब मौल यूसुफ साहब और नाम साहब अली साहब सबके अकादर इंशाल्लाह इससे फायदा हो तीसरे गुजारिश साहब की इसका मामूल बनाने की कोशिश है अल्लाह अपनी सबको कबूल करना है। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد Thank you.